بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بحران. یہ ناظرین ایک ایسے وقت جب مغربی ممالک اور یورپی پارلیمان دوسرے ملکوں کے سلسلے میں انسانی حقوق کے تعلق سے اپنی بیہودہ، بے وقت اور من گھڑت رپورٹیں جاری کر رہی ہیں، انہوں نے یہ فراموش کر رکھا ہے کہ ان کے حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر شام میں کس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی کس طرح کھلی اور وسیع پائمالی کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ اس طرح کی بربریت اور وحشیانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، بلکہ تازہ ترین جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق شام کے مختلف علاقوں اور خاص طور پر گزشتہ سال اگست کے مہینے میں دمشق کے علاقے غوطہ شرقی میں کیمیاوی ہتھیاروں کا جو استعمال کیا گیا تھا عام شہریوں پر، وہ امریکہ کے ذریعے دہشت گردوں کو فراہم کیے گئے تھے، اور اس میں سعودی عرب اور ترکی کا بھی ہاتھ تھا. اور اس بات کا انکشاف معروف امریکی صحافی سیمون ہیرش نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دمشق میں جو کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے گئے تھے، اس سلسلے میں امریکی صدر باراک اوباما نے جو شامی حکومت پر الزام لگایا تھا وہ محض جھوٹ تھا. باراک اوباما یہ جانتے تھے کہ یہ دہشت گرد عناصر کیمیاوی ہتھیار بنانے کی توانائی رکھتے ہیں. بہرحال ان دنوں ایک بین الاقوامی امن قافلہ شام پہنچا ہے جو مختلف علاقوں میں بے بس، بے سہارا اور بے کسو لاچار شامی عوام کے لیے کچھ دوائیں اور طبی سہولیات لے کر گیا ہے. مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر مختلف شہروں میں محصور شامی عوام تک طبی امداد اور سہولتیں بھی پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، اور مختلف شہروں میں دہشت گردوں نے شامی عوام کو انہی کے وطن میں، انہی کے شہر میں، انہی کے گاؤں میں ایک بڑے جیل خانے میں قید کر رکھا ہے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
شام سے موصولہ خبروں سے اس ملک کی فوج کی مسلسل کامیابیوں کا پتہ چلتا ہے، اور اس دوران بہت سے علاقوں پر فوج کا دوبارہ قبضہ ہو گیا ہے. شام کے اسٹریٹجک علاقے القلمون سے دہشت گردوں کے خاتمے کے بعد بہت سے شامی گھرانے اس علاقے میں لوٹ آئے ہیں، جبکہ لبنان سے موصولہ خبروں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شامی پناہ گزینوں کی بڑی تعداد اپنے وطن لوٹ رہی ہے. دراصل حالیہ دنوں میں شام کی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف وسیع کارروائی کی ہے، جس سے انہیں بہت سے علاقوں میں کافی نقصان ہوا ہے، اور شامی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے بھی لبنانی اخبار السفیر کو خصوصی انٹرویو کے دوران شام کی صورتحال اور لبنان پر اس کے اثرات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شام میں یورپ اور عرب ممالک اور اسرائیل کی مشترکہ سازش کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد اس ملک کی حکومت کے خاتمے اور اس ملک کی تقسیم کا خطرہ پوری طرح سے ٹل چکا ہے، اور شام کی حکومت نے یہ کامیابی عوامی حمایت کی بدولت حاصل کی ہے، اور اب وہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے مرحلے میں ہے. اس کے ساتھ ہی شام میں سرگرم مختلف دہشت گرد گروہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کاروائیاں کر رہے ہیں. خبروں کے مطابق بھیانک دہشت گرد تنظیم داعش نے دیر الزور میں جبہت النصرہ کے 100 دہشت گردوں کو قتل کر دیا ہے. دہشت گرد تنظیموں کے باہمی تصادم میں اب تک سینکڑوں مسلح افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ فوج کے جانب سے بھی ان کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور ان جھڑپوں اور جنگوں کے درمیان شام میں قومی آشتی کی وزارت بھی سرگرم ہو گئی ہے، اور بڑے پیمانے پر مختلف علاقوں میں امن کمیٹیاں قیام امن کی کوشش کر رہی ہیں. حکومت نے ریف دمشق میں قومی آشتی کے منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد کیا ہے، اور اس سلسلے میں سماج کی معروف اور مؤثر شخصیات کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں. حکومتی ذرائع نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ شام میں صدارتی انتخابات معینہ وقت میں ہوں گے. شام میں صدارتی انتخابات جولائی 2014 میں ہونے والے ہیں. شام میں تو دہشت گردی کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، لیکن شام سے 1000 کلومیٹر دور کچھ مغربی اور کچھ علاقائی ملکوں میں دہشت گردوں کی واپسی کے بعد کی صورتحال پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے. لندن میں ایک اسٹڈی سینٹر کی جانب سے جاری رپورٹ میں دہشت گردی کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ شام میں سرگرم 1000 دہشت گرد جن میں برطانوی دہشت گردوں کی بھی بڑی تعداد ہے، اپنے ملک واپسی کے بعد ملکی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام کے بحران کے بعد سیکورٹی کے لیے خطرات کی نوعیت میں اضافہ ہوا ہے اور دہشت گردی دنیا کے زیادہ علاقوں میں پھیلی ہے۔ یاد رہے اسلامی جمہوریہ ایران نے شام کے بحران کے آغاز کے ساتھ ہی زور دیا ہے کہ اس بحران کو پرامن راہوں سے ہی حل کرنا ممکن ہے۔
جناظرین، جیسا کہ ابھی ہماری رپورٹ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد امریکہ اسرائیل اور علاقے میں بعض اس کے عرب حکومتوں، اتحادی عرب حکومتوں، اور اسی طرح ترکی نے جو سازش رچی تھی شام کی حکومت کو گرانے اور شام کے حصے بکھرے کرنے کے تعلق سے، اب ان کی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ اور جو میدانی صورتحال ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ شامی فوج کو مسلسل کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور تو اور دہشت گرد گروہ خود آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف نبردازمہ ہو گئے ہیں اور خود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ دہشت گرد جو اسلام کے نام پر، افسوس کی بات ہے، اسلام کے نام پر شامی عوام کا خون بہا رہے تھے، اب خود جو آپس کے ہی ایک دوسرے کے مسلمان ہیں ان کا ہی خون بہا رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان دہشت گرد گروہوں کا نہ تو اسلام سے تعلق ہے اور نہ ہی انسانیت سے تعلق ہے، یہ صرف اور صرف سامراجی عزائم اور ان کے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ کرائے کے ایجنٹ ہیں۔ چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز طرز نگار اور عالمی امور کے ماہر بیرسٹر طاہر واسطی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واسطی صاحب، سب سے پہلے تو میں اس طرف آتا ہوں کہ ان دنوں برطانیہ کی وزارت خارجہ ہو یا یورپی پارلیمنٹ ہو یا مغرب کے دیگر ممالک ہو، میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ دوسرے ملکوں کے تعلق سے انسانی حقوق کے پیرائے میں اپنی رپورٹیں نشر کر رہے ہیں، اور جس سے ان کی نہیں بنتی ہے، ان کو جو ہے اس بات کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ فلاں فلاں ملک میں انسانی حقوق کی یا آزادی بیان کی یا جمہوریت کی پاسداری نہیں کی جا رہی، لیکن شام میں انہی ملکوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد اس بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی، انسانی حقوق تو دور کی بات ہے، انسانیت کو انہوں نے تار تار کر کے رکھ دیا ہے، تو کبھی انہوں نے ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف ایک لفظ کیوں نہیں منہ سے نکالا؟
شکریہ، بالکل آپ کی بات بجا ہے، ان کے منہ سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکل سکتا، اور ان کی زبانیں کنگ ہو جاتی ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ اسلحہ، یہ پیسہ اور نظریاتی امداد مہیا کرتے رہے ہیں، دنیا میں آج تک سب سے بڑے انسانیت کے خلاف حقوق کی، انسانی حقوق کی پامالی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں وہی لوگ ملوث رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان لوگوں نے وہ جرائم کیے ہیں جو شاید ہی کرۂ ارض پر اس سے پہلے کسی مسلمان عوام نے یا کسی انسان پسند عوام نے اپنی ساتھی عوام پر کیے ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کو سیکس جہاد کی آئیڈیالوجی مہیا کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہنوں بھائیوں اور ماؤں سے اس جنگ کے، دہشت گردی کی جنگ کے ساتھ یہ بات بتائی کہ آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی شخص کو صرف مارتے نہیں ہیں بلکہ اس کا سر کاٹتے ہیں اور اس کی لاش کو پلوں سے اور مفت کرین اور جگہوں سے کرینوں سے باندھ کے لٹکا دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیمیاوی ہتھیار اپنے ساتھیوں کے خلاف استعمال کیے۔ تو جو انسانی حقوق کی پامالی اپنے لوگ کرتے ہیں وہ ان کو بالکل نظر نہیں آتے، اور جہاں اگر کسی ایسی بیہودہ کتاب پر پابندی لگ جائے جس کے اندر گالی گلوچ لکھی ہوئی ہو تو یہ اس ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ وہاں پہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی وائلیشن ہوئی ہے۔ نہ ان کو سعودی عرب نظر آتا ہے، نہ ان کو بحرین نظر آتا ہے، نہ ان کو وہ عرب ممالک نظر آتے ہیں جہاں پر عورتوں کے حقوق کی، تمام مائنورٹیز کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، مگر ان کو نظر آتا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ شامی فوج جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ایک فوج جو اپنے ملک میں امن لانا چاہتی ہے، جو لوگوں کو آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سرنڈر کریں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ جو اپنے ہی ملک کے باسی جو ہیں وہ دوسرے ملکوں پر جا کے رہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، جن کو آپ نے جیلوں میں بند کر دیا ہے، ان کو آزادی نصیب ہو، وہ فوج جو ملک میں امن اور آزادی کی خواہاں ہے اس کے خلاف ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، جو عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں، जो कीमियावी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हकूक के बचाने की बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये उस डुप्लिसिटी का शिकार हैं, उस मुनाफकत का शिकार हैं जो ये हमेशा बरतते रहे हैं। जब दूसरों की बात आती है, जब अपनी बात आती है, तो इनको वो चीज़ें नज़र नहीं आती कि हमने किस तरह से सऊदी अरब में कभी इंसान हकूक की पामाली का जिक्र नहीं किया, हमने क्यों कभी बहरीन में इंसान हकूक की पामाली का जिक्र नहीं किया, हमने क्यों कभी और अरब की खलीज ममालिकों में इंसान हकूक की पामाली का जिक्र नहीं किया, हमने क्यों इसराइल में इंसान हकूक की पामाली का जिक्र नहीं किया। तो इंसानी हकूक जो हैं बुनियादी तौर पर बजाय खुद एक हथियार बना लिया है वेस्ट ने कि अगर किसी को बदनाम करना है या किसी मुल्क पर फौज कशी करनी है या किसी मुल्क को कॉलोनाइज करना है तो ये कहते हैं कि वहाँ पर इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, और चूंकि वहाँ इंसानी हकूक की पामाली हो रही है इनको इस बात का हक मिलता है कि वहाँ जाकर इंटरफेयर करें और उस मुल्क पर धौंस और धांधली जमाएं।
बहुत शुक्रिया आपका। मैं
ये डुप्लिसिटी और मुनाफकत का बड़ा वाज़ेह सबूत है
जी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं सीनियर तर्ज़ निगार प्रोफेसर रिजवान कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
अच्छा
जी रिजवान कैसर साहब, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? अस्सलाम वालेकुम जनाब रिजवान कैसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मारूफ
अमरीकी है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी शुक्रिया। मैं पूछना चाहूंगा कि मारूफ अमरीकी सहाफी सेमर हैरिस ने अपने एक ताज़ा इंकशाफ में कहा है कि गुज़िश्ता बरस दमिश्क के इलाके गौते शर्की में जो कीमियावी हथियार इस्तेमाल किया गया था अब वो तुर्की के ज़रिए वहाँ पहुँचाया गया था, इसमें अमरीका और सऊदी अरब भी मुलव्वस है। याद रहे कि यही वो वाक़या था जिसको बहाना बनाकर अमेरिका ने शाम पर हमला करने की पूरी तरह तैयारी कर ली थी, और बहर रोम और दीगर इलाकों में उसने अपने बहरी जंगी जहाज़ और फौजें रवाना कर दी थी, लेकिन बाज़ मुल्कों की इस्तकामत और मदाखलत की वजह से हमला टल गया था। अब जब यह इंकशाफ सामने आया है कि इसमें खुद अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब जैसे ममालिक शरीक थे, तो सूरत हाल आपको कैसी नज़र आ रही?
दो तीन बातें इस बारे में कहना चाहता हूं। एक कि शाम का बहरान जो आपने उन्वान लगाया, बुनियादी तौर पर अब ये बहरान ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि खत्म होने की तरफ है, लेकिन ये जो नए इंकशाफात निकल करके सामने आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उन्हीं इंकशाफात की एक अगली कड़ी है जिसके बारे में हमें और आपको पहले से इसकी इत्तला थी कि मगरबी दुनिया जिनकी सरबराही अमेरिका और इलाकाई जो ताकतें हैं, इन तमाम सारे लोगों ने बहरानी हालात पैदा किया सीरिया के अंदर और हर किस्म के हथियार का इस्तेमाल किया, कीमियाई हथियार का इंकशाफ अब हुआ है। लेकिन अगर इन कीमियाई हथियार के इंकशाफ को थोड़ी देर के लिए दरकिनार भी करते तो भी आप ये देखेंगे कि बहुत ऐसे किस्म के हथियार का इस्तेमाल किया गया, ऐसे ग्रोहों का इस्तेमाल किया गया है जिन्होंने सीरिया के अंदर, शाम के अंदर एक बुहरानी हालात पैदा किया है। और अब इन तमाम सारे लोगों को पता चल रहा है, खुद यूरोप का इसका एहसास है, अमेरिका को भी एहसास है कि जिन तंजीमों की उन्होंने पुष्ट पनाही की थी आइंदा वक्तों में वही उनके हलक का कांटा बन जाएंगे। और अब धीरे धीरे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि दरअसल शाम के मसाइल का हल वो नहीं है जो ये देना चाहते थे, और जिस तरीके की जो तंजीमें, जो शिद्दत पसंद है, जो वायलेंस में यकीन रखते हैं, तशद्दुद में यकीन रखते हैं, ये तमाम सारे लोग अब धीरे धीरे बैकफुट पर जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जरूरत है कि इन इंकशाफात के साथ साथ वहां की हुकूमत और दूसरे जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, इन सब लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे मसले का हल गुफ्त शनीद से ही निकाला जाए, ताकि आइंदा जितनी जानों का नुकसान हो चुका है, जितने माल का नुकसान हो चुका है, और जिस तरह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो सीरिया के अंदर, ये बहुत ही जरूरी है।
जी बहुत शुक्रिया। ताहिर वासी साहब, अमेरिका के बारे में तो सब जानते हैं और इसराइल जो है खुला हुआ दुश्मन है, इसके बारे में भी सब जानते हैं, मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की और सऊदी अरब की पोजीशन क्या होगी जो आइंदा सूरत हाल अब बनने जा रही शाम के ताल्लुक से, और जिस तरह से शाम ने इस्तकामत का मुजाहरा किया और इनकी साजिशों को नाकाम बनाया है, तो अब इनकी पोजीशन क्या होगी इलाकाई सतह पर, आलम इस्लाम में, मुसलमानों के दरमियान और साथ ही आलमी सतह पर भी?
मैं आपके सवाल का आखिरी हिस्सा सुन नहीं सका, लेकिन जहाँ तक सऊदी अरब की बात है और टर्की की बात है, मैं और आप और आपके नाज़रीन इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि सऊदी अरब को इस मामले में बड़ी मुंह की खानी पड़ी है। सऊदी अरब का गुस्सा भी बड़ा वाजे था। सऊदी अरब को, आपको याद हो, जब उसको सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्प्रेरी मेंबरशिप मिली, तो इसने वहाँ से इस्तीफ़ा भी इसी वजह से दिया और उसको लेने से इनकार कर दिया, चूँकि इनके मुताबिक अमरीका ने उस जंग में शिरकत से इनकार कर दिया था, और अमरीका जो है वो ईरान पर और सीरिया पर इन हमले के लिए तैयार नहीं था। और उस जंग जिसको सऊदी अरब फंड करने के लिए तैयार था, अमरीका ने कहा कि हम इस जंग में इस वजाहत के साथ, इस खुली हठधर्मी के साथ शामिल नहीं होंगे कि जाके अमेरिकन जो जहाज़ हैं वो जाकर सीरिया पर हमला करें। तो उस सुबकी के बाद सीरिया ने, सऊदी अरब ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान के साथ कोशिश कर रहा है और मुमालिक के साथ कोशिश कर रहा है। आज भी इस वक्त जॉर्डन में जितने भी अड्डे मौजूद हैं फ्री सीरियन आर्मी के, वो तमाम के तमाम उनकी फंडिंग सऊदी अरब कर रहा है। और अब वो जिसे कह रहे हैं मुंह की खानी पड़ रही है, उसको आलम इस्लाम में और उन तमाम मुमालिक के, मुसलमान मुमालिक के सामने, जो अब ये समझ गए हैं कि बुनियादी तौर पर सऊदी अरब मुसलमानों का नहीं सहूनियों का ज़्यादा दोस्त है, और सहूनी साजिशों और अमरीकी साजिशों का एक पपिट है जो वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि मुसलमानों में ये कहा जाए कि ये सऊदी अरब वो मुल्क है, इसका बादशाह वो है जो मुसलमानों की मसाजिद का सरबरा है, हालांकि मुसलमानों की मस्जिद का सरबरा है, सिर्फ अपने आप को कहलाता है, बैतुल मुकद्दस तो इनके पास है ही नहीं। तो सऊदी अरब को तो बड़ी सुबकी खानी पड़ी है, और मेरा ख्याल है कि इस्लामी ममालिक को बहुत अच्छा मैसेज इस बात का मिला है कि सऊदी अरब हमेशा, जब भी मुसलमानों पर बुरा वक्त पड़ा है, सऊदी अरब ने अमरीकी इकोनॉमी और अमरीकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ का दिफा किया है और मुसलमानों के हकूक़ का कभी दिफा नहीं किया। जहाँ तक बात टर्की की है, तो टर्की को इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात का मसला था कि वो किसी भी तरह इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए, और इसराइल का मफाद था कि सीरिया में हाफिजुल असद की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो और सीरिया में अनरेस्ट हो, चूँकि ये तमाम ममालिक ईरान के घेरा तंग करना चाहते थे। इस सूरत हाल में टर्की ने सहूनियों के साथ अपनी दोस्ती के लिए सऊदी अरब को अपने साथ राजी किया, और सऊदी अरब के कहने पर वो सब कुछ किया जो खुद टर्की की आवाम, आज अगर आप टर्की में देखें तो टर्की की अपनी आवाम अपनी इस हुकूमत से बहुत नाला और खफा है, जिसने सऊदी अरब के कहने पर न सिर्फ ये कि सिफरी सीन आर्मी और हाफिज़ बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ इकदाम किए,
जी
उनको असलाह वहाँ पर जाने दिया, ये कीमियावी हथियार वहाँ जाने दिए, बल्कि उन्होंने इसराइल के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो इन दोनों ममालिक ने मुसलमान उम्मा को ये मैसेज दिया है कि हम बुनियादी तौर पर अमेरिका और सहूनी मफादात की हिमायत करते हैं, और मुसलमानों की एज ए होल हिमायत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
जी रिजवान कैसर साहब, जिस अमरीकी सहाफ़ी की बात हो रही है हैरिस की, उसने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया है कि अगरचे बज़ाहिर शाम का बहरान मार्च 2011 से सामने आया, लेकिन शाम में बहरान पैदा करने के लिए मंसूबा अमेरिका और सऊदी अरब ने 2007 में ही तैयार कर लिया था। ना उस वक्त जो है वो अपराइजिंग का मामला था, ना इस्लामी बेदारी की लहर की कोई ऐसी बात सामने आई थी, ना मिस्र में तहरीक थी, ना ट्यूनिस में। तो 2007 में शाम के खिलाफ इस तरह के मंसूबे की तैयारी किस बात का पता देती है? इसका क्या मकसद हो सकता था आपके ख्याल में?
आपने 2007 का जो जिक्र किया है वो आगे का वक्त है जनाब। अगर आप वैसे तमाम सारे अगर जो खुफिया रिपोर्टें जो तैयार की गई हैं, तो ये मामला उससे भी 10 साल पीछे जाता है, जब ये तो तकरीबन 15 और 20 साल पुरानी बात है, जब ये तय किया गया था कि पूरे इलाके में वो तमाम सारे ममालिक जो इसराइल के लिए आइंदा वक्तों में खतरा साबित हो सकते हैं, उनमें से शाम को भी पहचान लिया गया था, और यह कहा गया था कि हम शुरुआत कहां कहां से करेंगे, आखिर में शाम पे जाकर के इस मामले को खत्म किया जाएगा। तो शाम के अंदर जो बहरान पैदा किया गया है वो दरअसल 20 सालों की साजिश का नतीजा है, सिर्फ 2007 का नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी तमाम सारी तंजीमें, ऐसी तमाम सारी रिपोर्टें जो अमेरिका में पैदा होती हैं, अमेरिकी जो रिसर्च स्कॉलर्स, जो इंटरनेशनल एकेडमिया के बड़े बड़े नाम होते हैं, इन तमाम सारे लोगों की रिपोर्टों पर भी उनकी लिखी हुई एक एक सफ़े और उनके लिखे हुए एक एक लफ्ज का एक तनकीदी हिस्सा लिया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इस वक्त की सोच किस दिशा में जा रही है, किस समझ जा रही है। इसलिए कि अगर आप पूरे मीडिया को अगर आप उठा करके देख लें।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। इस वक्त चलते हैं शाम, जहाँ पर एक ज़ायरीन अमन नामी बैनुल अक़वामी कारवां कल दमिश्क पहुँचा और वहाँ से इस कारवां को, इस काफिले को लाज़िक़िया जाना था। वह इस काफिले में पाकिस्तान के एक मारूफ अमन कारकुन महफूज यार खान साहब भी शामिल हैं, जो इस वक्त शाम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। महफूज यार खान साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हेलो जी, बज़ाहिर महफूज यार खान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी, बहुत शुक्रिया रابطہ आपसे हमारा हो सका इसके लिए, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपका काफिला पहुँचा है कल, कहाँ है इस वक्त और इस काफिले का शाम जाने का क्या मकसद है?
होम्स का दौरा मुकम्मल करके निकल रहे हैं। यहाँ पर जो अफेक्टेड एरिया से उनका विजिट किया है
जी,
और उस इलाके का खास तौर से मुआयना किया। यहाँ पर एक फ्रेंच जर्नलिस्ट को हिट कर दिया गया था जब वो दौरे पे आए हुए थे। कल हम लद्दाखिया में थे, लद्दाखिया के जो कैंप हैं उनको देखा जाके, वहाँ बच्चों में और लोगों में अद्वियात और खिलौने तकसीम किए, और हमारे साथ जो लोग आए हुए थे उन्होंने उन बच्चों के साथ गाने भी गाए, बॉक्सिंग भी की और उनके साथ अच्छा वक्त गुजरवाया
जी। महफूज यार खान साहब, इस वक्त जो शाम में आवाम की, आम शहरियों की और बच्चों की सूरत हाल है, जिस तरह से दहशत गर्दों के तशद्दुद और उनकी बर्बरियत का वो निशाना बन रहे हैं,
दोबारा फरमाइए। ये क्लोज द डोर।
हेलो महफूज यार खान साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप?
हेलो
जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आम शहरियों के लिए इंसान दोस्ताना इमदाद की सूरत हाल क्या है, क्या आलमी अदारे उन तक पहुंच रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं?
नहीं नहीं सुन पाया मैं आपको पूरी तरह।
मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर आम शहरियों की सूरत हाल क्या है जो दहशत गर्दों के जरिए महसूर है, मुहासरे में है, आलमी अदारे उन तक मदद, इंसान दोस्ताना मदद पहुँचा पा रहे हैं या नहीं? हेलो जी नाज़रीन, हमारे साथी कोशिश करेंगे कि दोबारा वहाँ से रابطہ हमारा बरकरार हो महफूज यार खान साहब से, जो ज़ायरीन अमन नामी बैनुल अक़वामी काफिले के तहत शाम में हो। जैसा कि आपने सुना कि कल दमिश्क पहुँचे, फिर वो साहली शहर लाज़िक़िया और इस वक्त होम्स में है, और शायद होम्स से निकल कर किसी और इलाके की तरफ ये काफिला रवा दवा है। अगर हमारा रابطہ हुआ तो हम वहाँ से एक बार फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ आम शहरियों की सूरत हाल क्या है और जिस तरह से उन पर मुसीबतों के पहाड़ ढहाए जा रहे हैं, अब वो किस हाल में। बहरहाल चलते हैं हम लंदन स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं बैरिस्टर डॉक्टर ताहिर वासी साहब। जी ताहिर वासी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब, जैसा कि अमरीकी सहाफ़ी हैरिस ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि बाराक ओबामा को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि ये जो कीमियावी हथियार गोते शर्की में इस्तेमाल किए गए हैं और जिनका इस्तेमाल किया गया है, ये शामी फ़ौज ने नहीं बल्कि दहशत गर्दों ने ही इनका इस्तेमाल किया होगा क्योंकि उनके पास इसकी तवानाई है, तो फिर इतना लाओ लश्कर जमा करने और फिर शाम को जो है वो उसकी ईंट से ईंट बजा देने का जो अज़्म ज़ाहिर किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, वो सारे बहरी बेड़े वहाँ पहुँचा दिए गए थे, क्या हासिल करना चाहते थे बाराक ओबामा ये सब कुछ जानने के बावजूद?
जी हाँ, हासिल तो वो ये करना चाहते थे कि वो जिसे हमारे यहाँ कहते हैं रेड हेरिंग, कि ये दिखा के एक दफ़ा वो इस हकूमत को कमज़ोर कर सकें, ईरान को पीछे हटा सकें और उन ममालिक को पीछे हटा सकें जो इस वक्त सीरियन हकूमत की इमदाद कर रहे थे और सितमजदा इलाकों में मदद कर रहे थे, और वो लोग जो इंसानी सोज मजालिम कर रहे हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो تو بنیادی طور پر ان کا مقصد جو تھا وہ ڈرانا تھا. براک اوباما کو یقیناً اس بات کا علم تھا جیسا کہ ہیرش نے بھی کہا, آپ نے صحیح فرمایا, اور مجھے بھی اس بات کی کچھ انڈیکیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ جس طرح سے براک اوباما نے پلٹی ماری اس میں, اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں, کہ جس طرح سے انہوں نے اس بات کو کہا کہ جناب ہم کانگریس سے نہیں امریکی عوام سے پوچھتے ہیں کیا ہمیں سیریا میں حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ خود اس بات کو, اس کا علم تھا کہ ایسا چونکہ ہوا نہیں ہے, اور یہ جو ویپنز ہیں یہ خود امریکہ نے, امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے سعودی عرب, ٹرکی اور جارڈن کی مدد سے ان دہشت گردوں کو مہیا کیے ہیں, اور جو فلمیں بنائی ہیں کہ جناب وہ جہاز اوپر سے گزر رہا تھا اور جہاز سے وہاں پہ وہ دکھایا کہ وہ ویپن وہاں سے گرا رہے ہیں اور وہاں سے وہ بارش کر رہے ہیں کیمیکل ہتھیاروں کی, وہ تمام کی تمام فلمیں, وہ تمام کا تمام ڈرامہ کیا گیا تھا, اور امریکنز کو چونکہ اس بات کا علم تھا اور اوباما کو اس بات کا خاص طور پہ علم تھا, تو اس نے سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے اور ان تمام ممالک کو جو یہ چاہتے تھے کہ حافظ بشار الاسد کی حکومت وہاں پہ دھونس اور دھاندلی سے ختم کی جائے, ان کو خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ تو اس نے پورا زور لگایا, لیکن چونکہ خود اس کے اندر بھی اس بات کا گلٹ تو موجود تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ امریکن فوج اگر وہاں جائے گی بھی تو اسے اس قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی جیسا کہ انہوں نے عراق میں یا افغانستان میں کچھ عرصے کے لیے کامیابی حاصل کی, تو اس نے یہ بال جو ہے امریکن عوام کی طرف پھینک دی, جس کا جواب یہ ہوا ایک تجزیے کے مطابق کہ کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں تقریباً 48 ووٹرز نے جب کال کی تو صرف ایک نے کہا کہ جناب آپ کو سیریا میں حملہ کرنا چاہیے, 47 کالرز نے اپنے اپنے ممبرز پارلیمنٹ کو جب فون کیا تو یہ کہا کہ امریکہ کو اس وار میں حصہ نہیں لینا چاہیے, اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہاں پر یہ بات ناممکن تھی کہ امریکہ اس جنگ میں حصہ لے, تو اس وقت انہوں نے ضرور سعودی عرب کے پریشر میں اور گلف کونسل کے پریشر میں آ کر اور ان تمام ممالک کے پریشر میں آ کر جو یہ چاہتے تھے کہ حافظ بشار الاسد کی حکومت کا دھونس اور داندی سے خاتمہ ہو, یہ دکھایا اور بحری بیڑے بھیجے اور اپنے جہازوں کو اکٹھا کر لیا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں, لیکن اندر سے ان کو اس بات کا علم تھا کہ سیریا عراق ثابت نہیں ہوگا, سیریا افغانستان شامل نہیں ہوگا, اور ان جھوٹی دھمکیوں اور دھاندلیوں سے شاید ان کے اپنے عوام کا, اپنے فوج کا نقصان تو ہو لیکن سیرین حکومت اس طرح سے ختم نہیں ہوگی, تو اس وجہ سے یہ سارا کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس کو ریٹریٹ بھی کر لیا گیا.
جی بہت شکریہ رضوان قیصر صاحب, اطلاعات یہ تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کہ خود جو دہشت گرد عناصر ہیں, داعش ہو یا فری سیرین آرمی ہو یا جبهة النصرة, ان سب میں آپس میں خود لڑائی زبردست طریقے سے چھڑ گئی, آج سے نہیں بلکہ مہینوں سے, اور خود آپس کی لڑائی میں سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے. اگر یہ اسلام کے نام پر گئے تھے, اگر یہ جمہوریت کے نام پر گئے تھے, اگر یہ عوام کا دفاع کرنے کے نام پر گئے تھے, تو یہ خود ایک دوسرے کا خون کیوں بہا رہے ہیں, اور یہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
ان تمام ساری تنظیموں میں جو سب سے خطرناک تنظیم ہے ISIS, اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ شام.
جی
بنیادی طور پر اگر ان تمام سارے لوگوں کی کارکردگیوں کو دیکھیں گے تو ان لوگوں نے مسئلے کا حل کم اور عام لوگوں کے اوپر تشدد کا جو مظاہرہ کیا ہے, تو اس سے وہ تمام ساری تنظیمیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے تھے وہ بھی تھرا گئے. انہیں ایسا لگا کہ آئندہ وقتوں میں اسی طرح سے ان کے تشدد کو ایسی کھلی اجازت ملتی رہی, اور جس کی پشت پناہی امریکہ نے کری ہے یا ٹرکی نے کیا ہے یا علاقے کے جو دوسرے تمام سارے طاقتیں ہیں جس میں سعودی عربیہ اور قطر کا بھی نام آتا ہے, ان تمام سارے لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ اگر سیریا کے اندر ریجیم کی تبدیلی لانی ہے, اور ریجیم کے تبدیلی لانے کے لیے دو طریقے تھے, یا تو پھر امریکہ اور اس کی قیادت میں حملہ ہوتا پورے سیریا کے اوپر, اور دوسرا طریقہ تھا کہ ان تمام ساری تنظیموں کا استعمال کیا جائے جس میں القاعدہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا اسلامک اسٹیٹ آف عراق ان شام اس طرح کے لوگ ہیں, تو ان کے جو مظالم ہیں عام لوگوں کے اوپر اس سے جب لوگ تھرائے, اور آئندہ بھر میں امریکہ اور مغربی دنیا کے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ دوسرا درد سر نہ ہونے جائے افغانستان میں جس طریقے سے اس نے جہادیوں کی پشت پناہی کری, سب سے پہلے تو ان کا ناجائز استعمال کیا, لیکن آئندہ وقت میں پھر انہی کو ختم کرنا اتنا بڑا بیڑا بن گیا کہ پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی. तो इस तरह के तमाम सारे वाकयात ऐसे खुल करके सामने आने लगे, तब इनको होश में, तब इन्हें होश आया कि दरअसल ये जिन लोगों की पुष्ट पनाही कर रही आंदा वक्त में, ये उनके लिए मुसीबत बनने जाने हैं। एक तो ये है, दूसरे ये जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि जो मुख्तलिफ तंजीमों के बीच की जो आपसी झड़पें हैं, तो दरअसल आप अगर देखेंगे पूरी दुनिया आलमी पैमाने पर जहां जहां भी दहशतगर्दी का माहौल है, वो दहशतगर्दी का माहौल बुनियादी तौर पर एक बड़े पैसे का भी मामला है। जो लोग इनकी पुष्ट पनाही करते हैं वो बेइंतहा खर्च करते हैं, और वो कौन उसके ऊपर काबिज होता है, उन वसाइल के ऊपर कौन काबिज होता है, उन इलाकों पर कौन काबिज होता है, उन ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर, मर्द औरत बच्चे जिनके ऊपर ये मजालिम ढा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर इस तरह का माहौल पिछले दिनों शाम के अंदर, खासतौर से जो शाम का वो हिस्सा जो है, सीरिया का वो हिस्सा जो इराक से लगा हुआ है, फलूजा और वहां पर जो रेगिस्तान का इलाका है, इन जगहों पर आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त किस्म के मजालिम हुए ऐसी तंजीमों के जरिए जो बुनियादी तौर पर रिजीम चेंज चाहते हैं, वहां की हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में धीरे धीरे पूरी दुनिया की आंखें खुल रही हैं, और अब सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यूनाइटेड नेशंस के जिस तरह से जिन बातों का एतराफ किया है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि शायद मामला इतना खुला अब नहीं रह पाएगा जितना कि पिछले दिनों हमें आपको देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंसानी बहरान है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो मेरे ख्याल में नागुफ्ता बे है। जिस तरह से लोगों के पास अद्वियात की कमी है, खाने की कमी है और दीगर तमाम सारी चीजों की कमी है, तो ये सब अपनी जगह बरकरार है, और वहीं हाफिज अल असद की जो सरकार है वो अपनी जगह मजबूत है और मुस्तहकम है। इस बात का खुलासा शायद दुनिया के सामने हो चुका और पूरी दुनिया अब इस बात को का नोटिस ले रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हालात हैं और आइंदा वक्तों में हालात बेहतर होने चाहिए। लेकिन मैंने आपके ही चैनल से कई बार इस बात को कहा और आज दोबारा उसको कहना चाहता हूं
जी,
कि दुनिया के किसी भी मसले का हल तोप, बंदूक और बारूद नहीं है, बल्कि मेज पर आमने सामने बैठ करके मसाइल हैं, शाम के अंदर के मसाइल हैं, वहां के अवाम के अंदर मसाइल हैं, उनकी शिकायतें हैं, सबको कैसे हम हल करें। और बुनियादी तौर पर मैं आपसे बताऊं जनाब कि लैटिन अमेरिका हमारे लिए एक बैनुल अक्वामी सियासत के नजरिए से एक बहुत अच्छा मॉडल निकल करके सामने आया है, जहां लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ममालिक आपस में एक दूसरे से एक मुआविन रिश्ता कायम करना चाहते हैं और उसकी मदद से जो मुकामी मसाइल और जो बैनुल अक्वामी मसाइल हैं इनका हल ढूंढना चाहते हैं।
जी जी, बहुत शुक्रिया आपका।
ये ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि शाम के अंदर एक बार फिर से लोगों को डायलॉग टेबल के ऊपर, गुफ्तगुशुनीद की मेज पर आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मुल्क, अवाम और सब की के फलाह में सबसे अच्छा कदम क्या होगा।
बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर चलते हैं लंदन स्टूडियो बैरिस्टर ताहिर वास्ती साहब की खिदमत में। उससे पहले हम अपने नाज़रीन की खिदमत में यह अर्ज़ कर दें कि महफूज यार खान साहब जो ज़ायरीन अमन नामी बैन अलाक़वामी काफिले में शाम गए हुए हैं, उनसे हमारे साथ ही बार बार रबता करने की कोशिश करें। लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ के जो हालात हैं शाम के, और ज़ाहिर उन्होंने बताया ख़ुद कि वो हम्स से निकल कर किसी और शहर की जानिब जा रहे हैं रास्ते में, तो शाम के जो मौजूदा हालात और सूरत हाल उसके पेश नज़र मोबाइल पर रबता ना हो पाना कोई गैर मतवक़ अम्र नहीं है। बहरहाल हम महफूज़ यार ख़ान साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ही दो जुमले से ही हमको ये बताया कि वो इस वक्त कहाँ हैं और उनकी सरगर्मियाँ क्या हैं। अगर आइंदा दिनों में ऐसा कोई वाकया पेश आया या मौका पेश आया तो हम फिर उनसे रबता या उनके दीगर साथियों से रबता करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं ताहिर वास्ती साहब की खिदमत में जो हमारे लंदन स्टूडियो में मौजूद हैं। ताहिर वास्ती साहब, मेरी आवाज़ सुने आप? जी ताहिर वास्ती साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इशारा करें ताहिर वासी साहब कि मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर लड़ते हैं दिल्ली स्टूडियो रिजवान कैसर साहब की खिदमत में। रिजवान कैसर साहब, जो इस वक्त मैदानी सूरत हाल है शाम की, और शामी फ़ौज जो ये के बाद दीगर इलाकों पर दोबारा अपना कंट्रोल हासिल करती चली जा रही है, तो इसके पीछे आप किन मुहरकात को देख रहे हैं?
कई सारे पहलू निकल करके सामने आ रहे हैं। एक के अब कतर जो है जिस तरह की पुष्टपनाही पहले कर रहा था, कतर इस पूरे मामले से हट गया है। मुकामी ताकतें जो हैं उनकी जो पुष्टपनाही इन तमाम के तमाम सारे जो रिबेल जिन्हें दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, इन सब की पुष्टपनाही से पीछे हट गया है। बैनुल अक्वामी सतह पर पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरह से इंसानी बहरान पैदा हुआ है और उनके जिस तरह से वजूहात का जायजा और उसके जो तासुरात हैं और उसके जो नतायज हैं, इन सब पर पूरी दुनिया की निगाह है। और जिस तरीके से अमेरिका के हमले से सीरिया बाल बाल बच गया और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि रूस को शाबाशी देनी पड़ेगी कि जिस तरह से रूस की मुदाखलत पर यह तय हुआ कि जो भी केमिकल हथियार है सीरिया के पास उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक उसी तरह का बहाना था जैसे इराक पर हमला करते वक्त का बहाना था कि वहां अलकायदा है, जबकि पता था कि उस वक्त अलकायदा नहीं है। सद्दाम हुसैन का कोई भी यहां तारीफ करने वाला इंसान नहीं है, लेकिन एक सद्दाम हुसैन के नाम पर पूरे इराक को आज जिस तरह से तबाह कर दिया गया और इराक जिस तरह से शिया सुन्नी के झगड़े की आग में झुलसा हुआ है, आज तक उसका निकल पाना मुश्किल हो रहा है, उसी तरह से एक कोशिश ये थी कि सीरिया में भी शायद ऐसा करने में कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाबी मिलती दिख नहीं रही है। बरक्स उसके वहां की जो फौज है पे दर पे लगातार उन तमाम सारे इलाकों में जो किसी जमाने में रिबेल के हाथों में चले गए थे उनसे वापस ले रही है और उन जगहों पर दोबारा हुकूमत का गलबा कायम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम सारे हालात ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात है जैसे अभी अब जिस कारवां की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वहां लोगों को गजा और अद्वियात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो पूरी दुनिया के सामने एक नई तस्वीर उभर करके सामने आती है कि आखिर ये कब तक चलेगा और पूरी दुनिया कब तक इस तरह से खामोश बैठी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम सारे बैनुल अक्वामी हालात ऐसे हैं, मुकामी हालात ऐसे हैं, इलाकाई सियासत और उसके हालात ऐसे हैं जहां अब लोगों को लग रहा है कि खुरेजी बहुत हो गई है, अब अमन की तरफ लौटा जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार का जो गलबा है उन इलाकों पर वो एक अहम मायने रखता है, लेकिन अगर पूरे तौर पर सरकार गालिब भी आ जाती है तो भी मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि डायलॉग टेबल पर तमाम सारे फरीकैन को आना बहुत जरूरी है और सब एक दूसरे की बातें सुने, भले इत्तफाक करें या ना करें लेकिन सुने जरूर, सुन लेने में कोई नुकसान नहीं है। उससे सरकार को भी पता चलता है कि अवाम या अवाम के अंदर कुछ ऐसे अनासिर जो भले भटके हुए हों, गलत किस्म के हों, फिर भी उसे एक जहनियत का पता चलता है और अवाम के ऐसे तमाम सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें भी ये पता चले कि आखिर सरकार का मौका क्या है।
बहुत शुक्रिया रिजवान कैसर साहब।
बेवकूफ तो ऐसे बेवकूफ लोगों की सरकार नहीं है
जी।
उसके जो मकासिद हैं पूरे इलाके में और जो उसका इस्तेहकाम एक जरूरी चीज है खुद सीरियाई अवाम के लिए, अगर कल को सीरियाई सरकार कमजोर हो जाती है तो इसराइल बगल में बैठा हुआ और उसकी जारियत हम तमाम सारे लोगों को फलस्तीन के सिलसिले से पता है।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में।
गुफ्तगू शुनीद का रास्ता एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए पूरे सीरिया के मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है।
जी बहुत शुक्रिया आपका। अगर वक्त रहा तो मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ताहिर वासी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कहा यह जा रहा है कि जो सूरत हाल है इस वक्त शाम में, जिस तरह से शामी फौज को कामयाबी मिल रही है और तमाम शहरों में छोटे छोटे इलाकों में अमन कमेटियाँ कायम कर दी गई कबायली इमायदीन की तरफ से और हर तरफ अमन बहाल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ऐसे में मुकर्ररा मुद्दत में या मुकर्ररा वक्त पर सदारती इलेक्शन होने की उम्मीद पाई जाती है?
जी हाँ, मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शंस हैं वो मुकर्ररा वक्त पर और मुकर्ररा मुद्दत पे ही होंगे जो जुलाई में 2014 में होने हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बशारुल असद ने हमेशा इस बात का कहा है कि अगर सीरिया में तब्दीली आएगी तो वो इलेक्शन के जरिए और वोट के जरिए आएगी, और वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर उनके मुल्क में कोई इख्तलाफात हैं, अपोजिशन के कोई तहफ़ुज़ात हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि इलेक्शंस के ज़रिए अपने उन बातों को अवाम के सामने लाया जाए और वोट के ज़रिए मुल्क में तब्दीली लाई जाए, बजाय इसके कि बंदूक और धौंस और धांधली से तब्दीली लाई जाए। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से रिट्रीट हो रही है, जिस तरह से फंडिंग की कुछ कमी हो रही है उनके पास और जिस तरह से उन्होंने आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी हैं, मुझे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सीरिया में अमन आएगा और इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस के बाद जो है अमन बहुत तेज़ी से आएगा, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आज तक सीरियन हुकूमत का और उन तमाम हुकूमतों का जो सीरिया के साथ खड़ी हैं, उन्होंने इस बात को अश्योर किया है कि इस मुल्क में वोट के ज़रिए तब्दीली आनी चाहिए, और इलेक्शन मेरा ख्याल है कि ईरान, चाइना, रशिया और बहुत सारी मुमलकत जो हैं जो इस वक्त सीरिया के साथ हैं, वो भी इस बात को इंश्योर करेंगी कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर हों, और उस इलेक्शन के नतीजे में जो तब्दीली आए उससे बड़ा अमल वहाँ पर बहाल हो।
जी रिजवान कैसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मगरबी ममालिक, ख़ासतौर पर अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब जैसे ममालिक मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होने देंगे, ख़ासतौर पर सदारती इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी बात इस वक्त चल रही है?
इन इंतखाबात के पीछे सबसे बड़ी बात कुव्वत इरादी सीरियाई अवाम की है। अगर सीरियाई अवाम की कुव्वत इरादी मजबूत है कि वहां इंतखाबात होने चाहिए सदारती, तो वो जरूर होंगे। दुनिया की ताकत और जितनी भी ताकतें हैं वो जितना भी जोर लगा ले, मेरे ख्याल में उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। हजारों मिसालें हमें दुनिया के दीगर ममालिक के जिम्न में देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात वहां के लोगों की कुव्वत इरादी पर है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जितने किस्म का जो नुकसान हुआ है इनको दोबारा कैसे बहाल किया जाए, उनकी जिंदगियां दोबारा कैसे बहाल की जाए। 1.5 लाख से ऊपर लोग जो है जिनके जाने जा चुकी हैं, कितने तमाम सारे लोग मुल्क से दरबदर रिफ्यूजी की हालत में जाकर के पड़े हुए, खुद मुल्क में अपने 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 इलाके और अपने घर और अपने शहर से दरबदर हुए पड़े हुए हैं। इन तमाम सारे लोगों को इंतखाबी सदारती इंतखाबात हों, लेकिन इन तमाम लोगों की जो जिंदगियां बहाल होनी है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि टॉप प्रायोरिटी रखा जाना चाहिए सीरियाई सरकार के जरिया और बैनुल अक्वामी तंजीमों के जरिया, और तब वैसी हालत में ये तय करना कि हम सदारती इंतखाबात के लिए जा रहे हैं जहां सीरिया का हर शहरी वोट देने के काबिल है। और तब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अमल होगा, वो जो प्रोसेस होगा, बहुत ही मुकम्मल होगा। लेकिन अगर इन हालात में किया जाए जहां लाखों लाख लोग अपने घरों से बाहर हैं, और तब ऐसी हालत में अगर इंतखाबात कराए गए, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जमहूरी अख्तियारात से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, बल्कि बजाय सताइश के और तनकीद निकल करके सामने आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सरकार की कुव्वत बढ़ रही है, पहली कोशिश होनी चाहिए कि आवाम की जिंदगियां बहाल हो और सदारती इंतखाब हो, और ये बहुत सही।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया रिजवान कैसर साहब।
इंतखाबात ही एक ऐसा तरीका है जहां जिसके जरिया हुकूमत बदली जानी चाहिए।
बहुत शुक्रिया।
हमारे हिंदुस्तान में भी अभी इंतखाबात का दौर चल रहा है,
हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं रिजवान कैसर साहब, शुक्रगुजार हैं हम आपके। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूदा मेहमानों की गुफ्तगु सुनी। यकीनी तौर पर जैसा कि रिजवान कैसर साहब कह रहे थे, शामी हुकूमत और हुकाम का यही कहना है कि हमारी पहली तरजीह आवाम को सर्वसामान देना और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और मुल्क में अमन कायम करना है, और यकीनी तौर पर ये सब उसी सूरत में होगा कि जब शामी आवाम हुकूमत के साथ हों और हुकूमत पूरी तरह शामी आवाम का हर तरह से और हर मैदान में साथ दे और अमन का अमल इंतखाबात की सूरत में अपने पाए तकमील को पहुँचेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासिज़वी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।